श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला दश दशम अध्याय श्लोक कल 148 तक में किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद को अपना भृत्य के रूप में ग्रहण किया। पहले महाप्रभु गोविंद को अपना सेवक के रूप में ग्रहण करने में इनकार किया था। क्यों? किसको याद है? बस, और किसी को याद नहीं है। Parul, your hand was up? Okay. Anyone from that side? Okay. Govinda, Sri Chaitanya Mahaprabhu ke guru bhrata the. Aur Govinda, Sri Chaitanya Mahaprabhu ke guruji, Sri Isharpuri ke sevak the. Toh jab Isharpuri apna aprakat lila vilas कर रहे थे, तब उन्होंने गोविंदों को निर्देश दिया कि जाओ तुम जाकर श्री कृष्ण चैतन्य को सेवा करो। तो इस निर्देश प्राप्त होकर गोविंद जगन्नाथपुरी आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये जो मेरे गुरु के सेवक थे वो मेरे पूज्य हैं, तो उनका सेवा में कैसे ग्रहण करूंगा। तो महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप एक तो गुरु भेजे हैं उनको मेरे सेवा के लिए, और बल्कि मैं तो उसका सेवा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोला कि गुरु की आज्ञा ही बलवान है, गुरुदेव जो बोलते हैं उसको ही स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि आपका गुरु उनको भेजे हैं आपका सेवा करने के लिए, तो सेवा करने का अधिकार उनको देना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, गुरु के आदेश अत्यंत बलवान होता है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, यह शास्त्र का आदेश है। तो उन्होंने रघुवंश से और रामायण से दो श्लोक का उद्धृति दिए थे। तो एक रघुवंश का जो ये था, स शुश्रवान मातरी भार्गवेन पितुर नियोगात प्रहितं द्विषद्वित द्विषद्वत प्रत्य गृहित अग्रज शासनं तदज्ञा गुरुनां ही अविचारणीया। अपने पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपने माता रेणुका को मार डाला, मानो वो कोई शत्रु रही हो। भगवान रामचंद्र का छोटा भाई लक्ष्मण तुरंत अपने बड़े भाई की सेवा में लगकर उनके आदेशों का पालन करने लगा। गुरु की आज्ञा का बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए, किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए। ओके, 148 से हम आज शुरू कर रहा हूं। प्रभुर प्रिय भृत्य करे सबे करे माने, सकल वैष्णवेर गोविंद करे समाधान। सभी व्यक्ति गोविंद को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम दास समझकर उसका सम्मान करते थे, और गोविंद सारे वैष्णवों की सेवा करता था तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता था। छोटो बड़ो कीर्तनिया दुई हरिदास, रामाई नंदाई रहे गोविंदेर पास। ज्येष्ठ हरिदास तथा कनिष्ठ हरिदास, बड़ा हरिदास और छोटा हरिदास, जो गवैये कीर्तनिये थे, तथा रामाई और नंदाई भी गोविंद के साथ रहते थे। गोविंदेर संगे करे प्रभुर सेवन, गोविंदेर भाग्य सीमा ना जाए वर्णन। वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए गोविंद के साथ रहते थे, अतः कोई भी गोविंद के भाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता था। आर दिने मुकुंद दत्त कहे प्रभुर स्थाने, ब्रह्मानंद भारती आईला तोमार दर्शने। अगले दिन मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी कि आपके दर्शन के लिए, आपके दर्शन हेतु ब्रह्मानंद भारती आए हैं। आज्ञा देह जदि तारे आनिए इथाए, प्रभु कहे गुरु ते हो जाबो तार ठाए। फिर मुकुंद दत्त ने महाप्रभु से पूछा, क्या मैं उन्हें यहाँ ले आऊं? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु तुल्य हैं। अच्छा यही होगा कि मैं उनके पास जाऊं। चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक वैष्णव सदाचार का बहुत सुंदर दृष्टांत मिलता है। ये महाप्रभु अपने लीला के द्वारा और अपने भक्तों के आचरण के द्वारा वैष्णव सदाचार, वैष्णवों को कैसे आचरण करना चाहिए, इसका बहुत सुंदर शिक्षा दिए है। जैसे यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और ब्रह्मानंद भारती उनको दर्शन के लिए आए हैं, वंस यू आर फॉरगिवन बट नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट बी, स्विच ऑफ एवरीवन और पुट देम इन साइलेंट मोड। और ब्रह्मानंद भारती उनके दर्शन के लिए आए थे, पर जब मुकुंद दत्त ने बताया कि आप उनको, क्या मैं आप बुला लाऊं अंदर आपसे मिलने के लिए, तब चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, नहीं, वो मेरे गुरु तुल्य हैं। गुरु तुल्य क्यों हैं? क्योंकि अपने गुरु के गुरु भ्राता है। ब्रह्मानंद भारती माधवेंद्र पुरी का शिष्य थे, अर्थात ब्रह्मानंद भारती श्री चैतन्य महाप्रभु का गुरु ईश्वरपुरी के शिष्य थे, ईश्वरपुरी के गुरु भ्राता थे। इस सिलसिले में ब्रह्मानंद भारती भी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु तुल्य हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया कि ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु तुल्य हैं, अच्छा यही होगा कि मैं उनके पास जाऊं। ये आचार है, ये सदाचार है कि मैं जाके उनसे मिलूंगा। ये गुरुजन के प्रति श्रद्धा बहुत ही जरूरी है। ये वैष्णव सदाचार का एक मुख्य अंग है। भक्ति के शुरू कैसे होता है? श्रद्धा से, आदो श्रद्धा। तो गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास भक्ति के आधार हैं। एतो बोली महाप्रभु भक्तगण संगे, चली आईला ब्रह्मानंद भारतीर आगे। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तगण ब्रह्मानंद भारती के समक्ष आए। ब्रह्मानंद पड़ियाछे मृग चर्मांबर, ताहा देखि प्रभु दुख पाइला अंतर। जब चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त उनके निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे मृग चर्म पहने थे। ये देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वैष्णव मृग चर्म नहीं पड़ते हैं। हिरण के जो चमड़ा वो नहीं पड़ते हैं। तो महाप्रभु ने तो बोला, देखिया छद्म कोइलो जान देखे नाई, मुकुंदेरे पूछे कहा भारती कोषाई। ब्रह्मानंद भारती को इस वेश में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बहाना बनाया मानो वे उन्हें नहीं देख रहे, परंतु तो उन्होंने मुकुंद दत्त से कहा, मेरे गुरु ब्रह्मानंद भारती कहाँ है? মুকুন্দ কহে এই আগে দেখো বিদ্যমান, প্রভু কহে তেহ নহেন তুমি আগে আন। মুকুন্দ দত্তের উত্তর দিয়া, ইয়ে ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপকে সমক্ষ মে হ্যাঁ, আপনি আপকে সমক্ষ হ্যাঁ। মহাপ্রভু নে কাহা তুম গলত কহ রহে হো, ইয়ে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নহি হ্যায়। অন্যের অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান, ভারতী গোসাই কেনে পড়িবেন চাম। তুম কিসি দূসরে কি বাত কর রহে হোগে, ক্যুকি ইয়ে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নহি হো সকতে, তুমে কোই জ্ঞান নহি হ্যায়। ভালা ব্রহ্মানন্দ ভারতী কেউ মৃগ চর্ম পহনে লগে। তো হ্যাঁ, মহাপ্রভু এসে ব্রহ্মানন্দ ভারতী কো শিক্ষা দে রহে হ্যাঁ, কি বৈষ্ণব কো এসে মৃগ চর্ম নহি পহননা চাহিয়ে। তো ইসলিয়ে উনহোনে বতায়া, ব্রহ্মানন্দ ভারতী কেউ এসে হ্যাঁ মৃগ চর্ম পর পহনেঙ্গে, ইয়ে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নহি হো সকতে হ্যায়। তো ইয়ে শুনকর শুনি ব্রহ্মানন্দ কহে, শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে, মোর চর্মাম্বর এই না ভাই ইহারে। যা ব্রহ্মানন্দ ভারতী নে ইয়ে শুনা তো উনহোনে সোচা, মেরা মৃগ চর্ম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কো আচ্ছা নহি লগ রহা। ভালো কহেন চর্মাম্বর দম্ভ লাগি পড়ি, চর্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি। ইস তরহ আপনি ত্রুটি স্বীকার করতে হুয়ে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নে সোচা, উনহোনে ঠিক হি কাহা হ্যায়, মৈ ইস মৃগ চর্ম কো প্রতিষ্ঠা কে লিয়ে হি ধারণ করতা হু, মৈ কেবল মৃগ চর্ম পহন কর অজ্ঞান কে সাগর কো পার নহি কর সকতা। আজি হইতে না পড়িব এই চর্মাম্বর, প্রভু বহির্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর। আজ সে মাই ইয়ে মৃগ চর্ম নহি ধারণ করুঙ্গা। জৈসে হি ব্রহ্মানন্দ ভারতী নে ইয়ে নিশ্চয় কিয়া, বৈসে হি মহাপ্রভু উনকে মন কি বাত জান গয়ে, অর উনহোনে তুরন্ত হি সন্ন্যাসী কে বস্ত্র মঙ্গা ভেজে। চর্মাম্বর ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পড়িল বসন, প্রভু আসি কইল তার চরণ বন্দন। যহি ব্রহ্মানন্দ ভারতী নে আপনা মৃগচরম ত্যাগ দিয়া আর সন্ন্যাসী কা বস্ত্র পহন লিয়া, তোহি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে আকর উনকে চরণ কমল মে নমস্কার কিয়া। ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে, পুননা করিবে নতি ভয় পাও চিত্তে। ব্রহ্মানন্দ ভারতী নে কহা, তুম আপনে আচরণ সে সামান্য জনতা কো শিক্ষা দেতে হো, মে তুমারি ইচ্ছা কে বিরুদ্ধ কুছ ভি নহি করুঙ্গা, অন্যথা তুম মুঝে নমস্কার ভি নহি করোগে অর মেরি উপেক্ষা করোগে, মুঝে ইসি কা ডর হ্যায়। সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল, জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি তো সচল। ইস সময় মুঝে দো ব্রহ্ম দিখা রহে হ্যায়, এক ব্রহ্ম হ্যায় ভগবান জগন্নাথ শ্রী যো গতিমান নহি হ্যায়, অর দূসরে ব্রহ্ম তুম হো যো সচল হ্যায়। ভগবান জগন্নাথ আর্চ্য বিগ্রহ হ্যায় অর ওয়ে অচল ব্রহ্ম হ্যায়, কিন্তু তুম তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হো অর তুম ইহা ওহা চলতে ফিরতে রহতে হো, তুম দোনো এক হি ব্রহ্ম হো, লেকিন তুম দো ভূমিকা নিভা রহে হো, এক সচল কি অর দূসরি অচল কি। ইস তরহ জগন্নাথ পুরী ইয়া পুরুষোত্তম মে আপ দো ব্রহ্ম রহ রহে হ্যায়। তুমি গৌরবর্ণ তেহ শ্যামল বরণ, দুই ব্রহ্মে কইল সব জগত তারণ। দোনো ব্রহ্মে সে তুম গোড়ে রঙকে হো অর দূসরে ব্রহ্ম ভগবান জগন্নাথ সওয়ালে হ্যায় সাওলে হ্যায়, কিন্তু তুম দোনো হি সারে জগত কা উদ্ধার করনে ওয়ালে হো। প্রভু কহে সত্য কহি তোমার আগমনে, দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রী পুরুষোত্তমে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে উত্তর দিয়া, মৈ সচ সচ কহ রহা হু, আপকি উপস্থিতি সে জগন্নাথ পুরী মে আব দো ব্রহ্ম হ্যায়। ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌর ব্রহ্ম চলো, শ্যাম বর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন অচল। ব্রহ্মানন্দ তথা গৌরহরি দোনো হি সচল হ্যায়, কিন্তু শ্যাম বর্ণ বালে জগন্নাথ দৃঢ়তা সে বৈঠে হ্যায় অর অচল হ্যায়। भारती ब्रह्मानंद, अच्छा भारती कहे सार्वभौम मध्यस्थ हइया इहार शने आमान नाय बुझो मन दिया। ब्रह्मानंद भारती ने कहा हे सार्वभौम भट्टाचार्य, तुम मेरे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच इस तर्क में मध्यस्थ बनो। व्याप्य व्याप्यक भावे जीव ब्रह्मे जानी, जीव व्याप्य ब्रह्म व्यापक शास्त्रेर बाखानी। ब्रह्मानंद भारती ने कहा जीव व्याप्य है जबकि पर ब्रह्म सर्वव्यापक है, ये शास्त्र का निर्णय है। चर्म घुटाइया कईल आमार शोधन, दोहार व्याप्य व्यापकत्ते एई तो कारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरा मृग चर्म छुड़ाकर मुझे निर्मल बना दिया है, ये इसका प्रमाण है कि वे सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान है और मैं उनके अधीन हूँ। सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगदि सन्नास कृच्छमो शांत निष्ठा शांति परायण। उनके शरीर का रंग सुनहला है और सारा शरीर पिघले सोने जैसा है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुढ़ोल है तथा चंदन से लेप किया हुआ है। सन्नास ग्रहण करके महाप्रभु सदैव संतुलित रहते हैं। वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के अपने मिशन में दृढ़ हैं और वे अपने द्वैत निर्णय तथा अपनी शांति में दृढ़ता से स्थित हैं। ये श्लोक महाभारत से विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत्र से उद्धरण है। एसब नामेर इहो हय निजास्पद चंदनाक्त प्रसादोर श्रीभुजे अंगद। श्री विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत्र के श्लोक में उल्लेखित सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हैं। उनकी भुजाएं चंदन लेप से बने बिजावट हैं एवं श्री जगन्नाथ जी पर चढ़े डोरे से सुसज्जित हैं। भट्टाचार्य कहे भारती देखी तोमार जय, प्रभु कहे एई कहो सेई सत्य हय। ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना फैसला ये कहते हुए सुनाया, ब्रह्मानंद भारती मैं देख रहा हूं कि तुम विजयी हुए। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, ब्रह्मानंद भारती ने जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। गुरु शिष्य नाय सत्य शिष्यर पराजय, भारती कहे इहो नहे अन्न हेतु हय। इस तरह महाप्रभु ने अपने को शिष्य और ब्रह्मानंद भारती को अपना गुरु स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा ये शिष्य अपने गुरु से तर्क में निश्चय ही हार गए हैं। ब्रह्मानंद भारती ने तुरंत प्रतिवाद करते हुए कहा तुम्हारी हार का कारण ये नहीं है, कारण कुछ दूसरा ही है। भक्त ठाए हारो तुमी ए तुम्हार स्वभाव, आर एक सुनो तुमी अपनो प्रभाव। ये तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, तुम अपने भक्तों के साथ अपनी पराजय स्वीकार करते हो। तुम्हारी एक दूसरी भी महिमा है जिसे तुम सावधान होकर सुनो। आजन्म कोरिनुमोई निराकार ध्यान, तुमा देखी कृष्ण होइलो मोर विद्यमान। मैं जन्म से ही निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता रहा हूँ, किंतु जब मैं तुम्हें देखा है मुझे कृष्ण का पूरा पूरा अनुभव हुआ है। कृष्ण नाम स्फुरे मुखे मन नेत्र कृष्ण, तुमाके तद रूप देखी हृदय सतृष्ण। ब्रह्मानंद भारती कहते रहे जब से मैं आपको देखा तब से ही मैं अपने मन में कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करता रहा हूँ और उन्हें अपनी आंखों के सामने देखता रहा हूँ। अब मैं भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने हृदय में आपको कृष्ण मानता हूँ, अतएव मैं आपकी सेवा करने के लिए परम उत्सुक हूँ। बिल्लो मंगल कोइलो जोइछे दशा अपनार, ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নে ভগবানকে সাক্ষাৎ কে লিয়ে আপনি নির্বিশেষ অনুভূতি ত্যাগ দি। আব মে দেখ রহা হুঁ কি মেরি দশা ভি উনহি জৈসে হো রহা হ্যায়। অদ্বৈত বিথি পথিকৈ রূপস্যা সানন্দ সিংহাসন লব্ধ দীক্ষা শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসী কৃতা গোপ বধূ বিতেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ইস নিষ্কর্ষ পর পৌঁছে, যদ্যপি মে অদ্বৈত মার্গ পর চলনে বালে দ্বারা তথা যোগ পদ্ধতি দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার মে দীক্ষিত থা, কিন্তু হঠাৎ কিসি নটখট এবং গোপীয় সে মজাক করনে বালে বালক দ্বারা দাসী কে রূপ মে পরিণত কর দিয়া যায়তা। তো ইয়ে কৃষ্ণ কা প্রভাব কা বর্ণন হ্যাঁ, ইয়ে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কা উক্তি হ্যাঁ, ইয়ে শ্লোক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কা হ্যাঁ। ইয়ে শ্লোক কা উদ্ধৃতি, এই শ্লোক কা উল্লেখ ভক্তি রসামৃত সিন্ধু মে আয়া হ্যাঁ। অদ্বৈত বিথি পথিকৈ রূপাস্যা সানন্দ সিংহাসন লব্ধ দীক্ষা হঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসী কৃতা গোপ বধু বিটেন। প্রভু কহে কৃষ্ণ তোমার গাঢ় প্রেমা হয়, যাহা নেত্র পড়ে তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে উত্তর দিয়া, কৃষ্ণ কে প্রতি আপ মে অগাধ প্রেম হ্যায়, অতএব আপ জিধর ভি দেখতে হ্যায় আপকি কৃষ্ণ চেতনা বাড়তি যাতি হ্যায়। ভট্টাচার্য কহে দোহার সুরাত্ম বচন, আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন। সর্বম ভট্টাচার্য নে কহা, আপকে দোনো কথন সহি হ্যায়, কৃষ্ণ কৃপা করকে সাক্ষাৎ দর্শন দেতে হ্যায়। প্রেম বিনা কভু নহে তার সাক্ষাৎকার, ইহার কৃপাতে হয় দর্শন ইহার। কৃষ্ণ প্রেম হুয়ে বিনা হাম উনকা সাক্ষাৎ দর্শন নেহি কর সকতে। ইসলিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি কৃপা সে ব্রহ্মানন্দ ভারতী কো ভগবান কা সাক্ষাৎ হো সকা। প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্বভৌম, অতি স্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে কহা, আরে সার্বভৌম ইয়ে তুম ক্যা কর রহে হো, ক্যা ইয়ে তুম ক্যা কর রহে হো, হে বিষ্ণু মুঝে বচাও, ইসি স্তুতি নিন্দা কা দুসরা রূপ হ্যায়, ইসি এসি স্তুতি নিন্দা কা দুসরা রূপ হ্যায়, অতি স্তুতি নিন্দা কা হি লক্ষণ হ্যায়। এত বলি ভারতীরে লইয়া নিজ বাসা আইলা, ভারতী গোসাই প্রভুর নিকটে রহিলা। ইয়ে কহকর মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতী কো আপনে সাথ আপনে বাসস্থান লে গয়ে। উস ক্ষণ সে ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাপ্রভু কে সাথ রহনে লগে। রামভদ্রাচার্য আর ভগবান আচার্য, প্রভু পদে রহিলা দই ছাড়ি সর্বকার্য। বাদ মে রামভদ্র আচার্য তথা ভগবান আচার্য ভি উনকে সাথ হো লিয়ে। ওয়ে আপনি আপনি জিম্মেদারি ছোড় কর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে শরণ মে আ গয়া। কাশীশ্বর গোসাই আইলা আর দিনে, সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ স্থানে। আগলে দিন কাশীশ্বর গোসাই ভি আ গে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে উনকি বড়ি আব ভগত কি, আর ওয়ে ভি উনহে উনহি কে সাথ রহ গে। প্রভুকে লইয়া করান ঈশ্বর দর্শন, আগে লোক ভিড় সব করি নিবারণ। काशीश्वर महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर के भीतर ले जाया करता था। वो भीड़ में महाप्रभु के पीछे पीछे रहता और लोगों को दूर रखता जिससे उनका स्पर्श न हो सके। যত নদ নদী জইছে সমুদ্রে মিলয়, ওইছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহা তাহা হয়। জিস তরহ সারি নদিয়া সমুদ্র মে মিলতি হ্যাঁ, উসি তরহ সারে সারে ভক্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে শরণ মে আনে লগে। সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে, প্রভু কৃপা করি সবাই রাখিল নিজ স্থানে। चूंकि सारे भक्त उनकी शरण में आने लगे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों पर कृपा की और उन्हें अपने संरक्षण में रख लिया। एई तो कहिलो प्रभुर वैष्णव मिलन, इहा जे सुने पाए चैतन्य चरण। इस तरह मैंने महाप्रभु के साथ समस्त वैष्णवों के मिलन का वर्णन किया है। जो भी इस वर्णन को सुनता है ओह उसी शरण प्राप्त हो करता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, श्री चैतन्य चरितामृत कहि कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए तथा उनका अनुगमन करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें दक्षिण भारत से जगन्नाथ पुरी लौटने पर वैष्णवों से महाप्रभु की भेंट का वर्णन हुआ है। तो दसम अध्याय में, मध्य लीला का दसम अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण भारत से वापस आने के पश्चात भक्तगण कैसे उनको मिला था जगन्नाथपुरी में, इसका वर्णन हुआ है। अध्याय 11, तो इस अध्याय का जो सारांश मैं पढ़ के आज का पाठ खत्म करूंगा। भक्ति विनोद, श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाए। भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह भाष्य में 11वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं राजा प्रताप रुद्र को मिलाने का भरसक प्रयत्न किया तो महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। इसी समय रामानंद राय अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वहीं आ गए और उन्होंने महाप्रभु के सामने राजा प्रताप रुद्र की अत्यधिक प्रशंसा की। इससे महाप्रभु कुछ नरमाए। राजा ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य से वादा किया कि वे भेंट करने का प्रयास करेंगे। अनवसर के समय जब भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक विश्राम करते होते हैं, महाप्रभु उनका दर्शन नहीं कर सके, अतः वे आलालनाथ गए। बाद में जब बंगाल के भक्तगण उन्हें देखने आए तो वे जगन्नाथ पुरी लौट आए। जब अद्वैत आचार्य तथा अन्य भक्तगण जगन्नाथ पुरी आ रहे थे तो महाप्रभु के दो सहायक स्वरूप दामोदर तथा गोविंद मालाएं लेकर उनकी अगवानी करने गए। राजा प्रताप रुद्र ने अपने महल से सारे भक्तों को आते हुए देखा। गोपीनाथ आचार्य राजा के साथ छत पर खड़े थे और सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने प्रत्येक भक्तों की पहचान की। राजा ने गोपीनाथ आचार्य से भक्तों के विषय में बातें की और इसका उल्लेख किया कि ये भक्त तीर्थ यात्रा के नियमों का पालन न करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व न तो उन्होंने अपने बाल बनवाए हैं न उन्होंने तीर्थ स्थान में उपवास किया है, तो भी राजा ने सारे भक्तों को रहने के लिए कमरे दिला दिए और उनके प्रसाद की व्यवस्था कर दी। श्री चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त तथा अन्य भक्तों से घुल मिल कर बातें कर रहे थे। तभी हरिदास ठाकुर भी आ गए और महाप्रभु ने उनके दीन तथा विनीत भाव के कारण उन्हें मंदिर के निकट एकांत स्थान दे दिया। इसके बाद महाप्रभु सारे भक्तों को चार टोलियों में बांटकर संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन के बाद सारे भक्त अपने अपने डेरा में चले गए। तो कल से हम 11 अध्याय का पाठ शुरू करेंगे। इसका सारांश का वर्णन यहाँ हुआ है जो हम अभी पढ़ा। कोई प्रश्न है किसी को? ओके। चैतन्य चरितामृत क्या है? चैतन्य चरितामृत शास्त्र है, तो शास्त्र में इसका उल्लेख है, तो इस क्या है, शास्त्र का निर्देश है। साधु का वाणी और शास्त्र का निर्देश में कोई फर्क नहीं होता, दोनों के रूप में ही हम ग्रहण कर सकते हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो कुछ खुद कुछ बनाकर नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो सुनेंगे उसको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का सहारा मिलेगा, शरण मिलेगा। ये शास्त्र निर्देश है, उन्होंने बता रहे हैं ये होगा। भक्तिपूर्वक जो ये पाठ सुनेंगे उसका उनका महाप्रभु के चरण कमलों का सहारा मिलेगा। साधु का वाणी और शास्त्र का निर्देश में कोई अंतर है? साधु अपना मन से बनाकर कुछ नहीं बोलते हैं। साधु शास्त्र का जो सही है, जो सत्य है, उसका ही वर्णन करते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ठीक है। आज शाम को तो काफी भीड़ होगा मंदिर में, तो आज कीर्तन नहीं करेंगे। कल मैं बोला था कि मैं कीर्तन करने को जाऊंगा, बल्कि कोई आ गए थे बस और नहीं जा पाया उसका। तुम अनाउंस करे चले? कल अचानक एसपी मिलने को चाहा, तो मैं बोला ठीक है आ जाइए, तो इसलिए मैं कीर्तन में नहीं जा सका। थैंक यू। हरे कृष्णा। मंदिर में कितने भक्त, कितने लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए?
अच्छा।